नवदेवता व्याख्यान माला मध्यांतर के पश्चात पुनः प्रारंभ की जाती है और इसमें एक ऐसी गाथा आई है पांच परमेष्ठियों को लेकर जो अभी तक शास्त्रों में तो देखने नहीं मिली पर कहीं ना कहीं से आई अवश्य है। अब किसी की जानकारी में हो तो खोज कर सकते हैं। अर्हंता छे आला सिद्धा अट्ठे सूर छत्तीसा ओझाया पणवीसा साहूण होते अडवीसा। ये पांच परमेश्वरों के गुणों की संख्या दी हुई है। अर्हंता छे आला 46 अर्हंतों के, सिद्धा अट्ठे सिद्धों के 8, सूर छत्तीसा आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25, साहूण अडवीसा होते साधुओं के गुण 28 होते हैं ऐसा लिखा है। पर अभी अपन देखते हैं उपाध्याय परमेष्ठी के जो गुण हैं पूर्वाचार्यों ने गाथाओं में क्या लिखा है, क्योंकि अरहंत सिद्ध और आचार्य परमेष्ठियों का वर्णन अपन ने 3 महीनों में सुना था, समझा था, पढ़ा था। अब उपाध्याय परमेष्ठी का जो चित्रण है तिलोय पंडिती ग्रंथ की चौथी गाथा में, अन्नाण घोर तिमिरे दुरंत तीरम हिंड माणाणम, भगवान चोय राम छाया वर्मदिंदेन्दु। अभी तक जितने ग्रंथों का स्वाध्याय हो चुका है अपने जीवन में उनमें से ढेर सारे ग्रंथ यही सोलापुर से संबंधित है। अन्नाण घोर तिमिरे दुरंत तीरम मिहिंड माणाण भवियाण जोय राम उवझाया वरमदिं तेंदु। जिसका किनारा मिलना मुश्किल है ऐसे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में भटकने वाले भव्य जीवों को प्रकाशित करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले उपाध्याय परमेष्ठियों से हम यतिपुष्प आचार्य प्रार्थना करते हैं कि सब भव्य जीवों को आप उत्तम मति प्रदान करें, सम्यक ज्ञान का दान करें। उपाध्याय परमेश्वरों से निवेदन है, प्रार्थना है, अभ्यर्थना है कि वो हमें सम्यक ज्ञान प्रदान करें। नियमसार ग्रंथ में कुंद कुंद आचार्य लिखते हैं, रेण तय संयुक्ता जिन कही अपयथ देसया सूरा निकंख भाव सहिया वो छाया ईर्षा हुंती। जो रत्नत्रय से संयुक्त है, अब यहाँ पर रत्नत्रय में जो सम्यक चारित्र है वो संयमाचरण रूप सम्यक चारित्र है, और उसमें भी अनगार संयम चारित्र है। उन उपाध्यायों की बात चल रही जिन्होंने अनगार संयमाचरण रूप सम्यक चरित्र को अंगीकार किया है, और जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान से संपन्न है ही, वे उपाध्याय परमिष्ठी रत्नत्रय से युक्त हैं, और जिनेंद्र द्वारा सर्वप्रथम दिव्य ध्वनि में जिनका कथन किया गया था, ऐसे पदार्थों के देशक उपदेशक हैं, यानी जिनेंद्र प्रणीत पदार्थ तत्वों के, अस्तिकाय और द्रव्यों के उपदेशक, और जो शूरवीर हैं अपने आचरण में भी और अपने वक्तव्य में भी, भयवश वो अन्यथा प्रतिपादन नहीं करते, वो सत्य वक्ता है, और सत्य वक्ता वही होता है जिसके अंदर साहस है। कायर लोग सच नहीं बोलते, इसलिए शूरवीर है, और निकंक भाव से ही हम वो जो बोल रहे हैं, जिन साधुओं को वो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और अन्य भव जीवों को भी जो उपदेश दे रहे हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, ये आगम है और ये उसका विवरण है। मेरे निमित्त से आप तक ये आगम का रहस्य पहुंचा है, तो आप भले ही अपने आप को मेरा ऋणी समझो, लेकिन मुझे किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस धर्मोपदेश के बदले आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपने धर्म ध्यान से अपने कर्मों की निर्जरा तो चाहता ही, अन्य से कुछ नहीं चाहता। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। धवला पुस्तक एक में लिखा है, 32वीं गाथा है उपाध्याय परमेष्ठी की, नियमसार की 74वीं गाथा थी, तिलोय पंडित की 4थी गाथा थी। 4थी का 4 यथावत रखकर उसके सामने 7 लगा दो, 74 हो गए, और फिर धवला की 32वीं गाथा पहली पुस्तक की, निकंक भाव सहिया, ये तो हो गया। 34 पूर्व महोया, 34 पूर्व महो यही महिगम सिवथियो सिवथीण सीलंधराणवत्ता होई मुनि सो उवझायो। वस्तुतः उपाध्याय परमिष्ठी धर्मोपदेशक हैं और आगमोपदेशक हैं, मुख्य रूप से वो आगम का ही उपदेश करते हैं और शिक्षा देते हैं, ज्ञान गुरु है। उनको श्रुत गुरु कहते हैं, और आचार्य को दीक्षा गुरु कहते हैं। ये उपाध्याय श्रुत गुरु कहलाते हैं, क्योंकि ये श्रुत ज्ञान में बड़े होते हैं सबसे, और श्रुत देने में अत्यंत निपुण होते हैं। कठिन से कठिन विषय को सरल से सरल बनाने की क्षमता इनके पास होती है। तो 14 पूर्व रूपी महासागर को प्राप्त होकर 11 अंग तो पहले जरूरी है, उसके बाद फिर ये 14 पूर्व आएंगे। तो ऐसे शास्त्र समुद्र को प्राप्त होकर शिवत्यो मोक्ष के लिए जो उत्कंठित हो चुके हैं और जो मोक्ष के लिए उत्कंठित अन्य त्यागी व्रति हैं, सीलन धराण जो शील के धारी हो चुके हैं, उनके लिए वत्ता हुई जो वक्ता हो जाते हैं, अर्थात उनके लिए वक्तव्य देते हैं, शीलधारियों के लिए वक्तव्य देते हैं। सो मुनि उवच्छाओ, वे मुनिराज उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। फिर धवला के 9वीं पुस्तक में पुनः उपाध्याय परमेष्ठी के विषय में लिखा है, अन्नान यंध यारे अणुर पारे भमंत भवियाण, उज्जो ओजी कौ पश्यंतु सया उवज्जाया। अज्ञान रूपी अंधकार में कैसा है वो अज्ञान रूपी अनंत अंधकार, जैसा तिलोय पंडित्य में लिखा था वैसा है। वीरसेन आचार्य महाराज ने भी यति वृषभ आचार्य महाराज का अनुकरण किया है। अणुर पारे, जिसका पार प्राप्त करना कठिन है, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में भमंत भवियाणम, भ्रमण करने वाले भव्य जीवों के लिए उज्जो जी कहो, जिन्होंने प्रकाश फैला दिया। अंधेरा ही अंधेरा था लेकिन जिन्होंने प्रकाश फैला दिया, वे उपाध्याय परमेष्ठी सया पश्यंतु, सदैव हमारी विशुद्धि का कारण बने। उनका स्मरण करके हमारा मन हमेशा निर्मल हो जाए, वे हम पर कृपावंत हों, वे हम पर प्रसन्न हों, हमें आत्मकल्याण का आशीर्वाद प्रदान करें। मूलाचार ग्रंथ के षडावश्यक अधिकार में उपाध्याय परमेष्ठी के विषय में 511वीं गाथा है। धवला पुस्तक 9 की जो गाथा थी वो 4थी गाथा थी। बार संगे जिणखारम सज्जायम कथितम बुधे, उपदेशई सज्जायम तेणुवज्झाऊ उच्चदे। जिनेन्द्र द्वारा कथित स्वाध्याय ज्ञानी जनों के द्वारा 12 अंग के विषय में कहा गया है, अर्थात जिनेन्द्र देव ने जो स्वाध्याय नाम का तप बताया है वो स्वाध्याय 12 अंगों से संबंध रखता है। वो दुनियादारी के और जो साहित्य है या और भी कई लेखक वक्ता और कवि के वचनों का संग्रह है वो स्वाध्याय तप का विषय नहीं है। स्वाध्याय तप का विषय जिनक खादम जिनेन्द्र प्रणीत स्वाध्याय है वह बारह संगे जिनवाणी के द्वादश अंग से जुड़ा हुआ है उसमें जो स्वाध्याय किया जाता है वो स्वाध्याय तप होता है। तो स्वाध्याय कौन कराएंगे? तो अपन अपने मन से कर सकते हैं क्या सारा स्वाध्याय? असंभव है। जो लोग कर रहे हैं वो बुरी तरह भटक रहे हैं। गुरु की शरण बिना किया हुआ स्वाध्याय अर्थापत्ति में बारंबार चूक होने के कारण संसार भ्रमण का कारण ही बन जाता है। संसार से पार नहीं लगा पाता। अनुवादकों ने बहुत प्रयास किया अनुवाद सही करने का लेकिन कहीं कहीं वो भी चूक गए। कई स्थानों पर उनकी मति भी असमर्थ हुई। पंडित टोडरमल जी प्रशंसनीय विद्वान है जिन्होंने गोमटसार का अनुवाद करते समय अपनी ढूंढारी भाषा में एक पंक्ति अनेक स्थानों पर लिखी है। वो पंक्ति ये है कि याको अर्थ मोकू भाषे नाही है ताते को विद्वान मिले तो उनसे जान लेना। ये उनकी विनम्रता है और प्रशंसनीय है। जिसका अर्थ नहीं पता वो लिखित रूप से कह रहे हैं कि इसका अर्थ मुझे नहीं पता और ये उनकी सत्य निष्ठा है कि वो अर्थ का अनर्थ ना करके अर्थ का अर्थ न करना पसंद कर रहे हैं। जिसका जिस अर्थ का उनको बोध नहीं है वो अर्थ नहीं दे रहे हो और कह रहे हैं कि विद्वान से पूछ लेना। मोक्षमार्ग प्रकाशक के प्रारंभ में एक पंक्ति आती है कि अगर आपको अर्थ नहीं पता तो आप कह दो कि मुझे नहीं पता। भले लोग आपको छोटा समझ लें कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन बड़ा बनने के चक्कर में गलत अर्थ बताया तो सिर्फ नुकसान होगा। और वहां तो उन्होंने ये भी लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में कि मुझे इस समय इसका अर्थ ज्ञात नहीं है। मैं प्रयास करूंगा, मैं शास्त्रों का आलोडन करूंगा, मैं उस अर्थ को ढूंढूंगा, तुम भी ढूंढना। यदि मुझे पहले मिल गया तो मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम्हें पहले मिल जाए तो तुम मुझे बता देना। कितनी सुंदर बात है। तो उन्होंने जो अनुवाद किए वो अनुवाद उन्होंने अपनी सत्य निष्ठा से किए। फिर कालांतर में जब स्वाध्यायकर्ताओं ने उन गाथाओं की टीकाओं को पढ़ा, उनकी व्याख्याओं को देखा तो कहीं कहीं पर अनुवाद में मूल से भिन्नता आ रही है। पंडित टोडरमल जी ने जो अनुवाद किए हैं वो अनुवाद मूल से थोड़े भिन्न जा रहे हैं। जैसे एक गाथा आपके सामने रखते हैं, गुमटसर जीवकांड की 27वीं गाथा, सम्माई ठी जीवो उवीठं पवयणंत सद्धहदि असद्भावो अजान मानो गुरु नियोगा। तो इसमें शब्दार्थ में वो चूक गए हैं, ये कोई आलोचना नहीं है, बड़े बड़े लोग चूक जाते हैं। उमा स्वामी आचार्य महाराज कहते हैं कि कौन अभिमोहयति शास्त्र समुद्र, शास्त्र समुद्र के समान है, इसमें कौन नहीं भटक सकता है, कोई भी भटक सकता है। तो उन्होंने ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि जीव जिनोपदिष्ट वचन पर श्रद्धान करता है और अज्ञानी गुरु के निमित्त से वो किसी असत्य तत्व पर भी श्रद्धान कर लेता है। पर गाथा का अर्थ कुछ भिन्न है। गाथा का अर्थ यह है, अजान मानो गुरु नियोगा असभ भावम सद्दहति, इसका अर्थ यह है अजान मानो जो है वो गुरु का विशेषण नहीं है, शिष्य का विशेषण है। तो देखो दोनों अर्थों में बड़ा अंतर आ जाता है। उन्होंने जो अर्थ किया उसमें उन्होंने लिखा है कि वो अज्ञानी गुरु के निमित्त से मिथ्या श्रद्धान कर लेता है लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि रहता है, क्योंकि उसने जिन वचनों पर श्रद्धान किया है उसको जिन वचन मानकर श्रद्धान किया, पर गाथा का मूल अर्थ क्या है, सम्मा इट्ठी जीवो अजान मानो, उस सम्यक दृष्टि जीव जानकार नहीं है, ये अर्थ है। गुरु तो जानकार है, पर पंडित जी ने उसके अर्थ में गुरु को अज्ञानी मान करके वैसा अनुवाद कर लिया, पर अपन उस अनुवाद का आग्रह पकड़े ये बात उचित नहीं है। आपको कितने भी पसंद क्यों ना हो टोडरमल जी, वो पसंद आप अपने पास रखना, लेकिन शास्त्र का अर्थ जो शास्त्र में दिया है वही मान्य करना होगा। उन्होंने किया इसका मतलब वो सब बहुत ऊंचे विद्वान थे, बहुत महान विद्वान थे। कोई कितना भी महान हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन कोई आगम से तो बड़ा नहीं होता ना। वो चाहे कोई परमेष्ठी पद पर विराजमान व्यक्तित्व भी क्यों ना हो, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई आचार्य उपाध्याय और साधु के मुख से भी आगम से भिन्न कोई वचन निकल रहा है तो जो शिष्य है या भक्त है वो क्या करे। नहीं, परमेश्वरी के मुंह से सुना है मैंने, मैं तो किसी को नहीं मानूंगा, बस उनके मुख से जो सुना है वही मानूंगा। तो ऐसा बहुत लोग कर रहे हैं वर्तमान में, तो उनका क्या कर्तव्य है। तो गुमटसार जीव की 27वीं गाथा के बाद वाली गाथा में, 28वीं गाथा में स्वयं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य लिख रहे हैं कि उनका क्या कर्तव्य है। देखो अभी तक वो सम्यक दृष्टि है, गलत श्रद्धा होने पर भी सम्यक दृष्टि है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है कि गुरु की वाणी में और जिनेंद्र की वाणी में कोई फर्क है। अब इसके बाद वाली गाथा में क्या कह रहे हैं, सुत्ता दूतम सम्मम दरिसिज्जन्तम जगाण सद्दहति सोचे भवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदि। अब कालांतर में हो सकता है एकाध दो वर्ष पश्चात, अथवा हो सकता है एकाध दो दशक पश्चात, कोई ऐसे ज्ञानी आचार्य उपाध्याय साधु अथवा मूलानुगामी निष्पक्ष स्वाध्यायी जैन विद्वान या सामान्य श्रावक या कोई अविरत सम्यक दृष्टि भी उनको आगम दिखाते हैं, हे गुरुवर नमस्ते, आप जो कह रहे हैं वो आगम से थोड़ा भिन्न है, वो सम्यक दृष्टि है जिन्होंने आगम से भिन्न कथन किया है, क्योंकि उन्होंने गुरु के नियोग से वो श्रद्धान किया, ये मानकर किया कि गुरुवाणी और जिनवाणी में कोई अंतर नहीं। लेकिन अब ये प्रसंग सामने आ गया कि सामने जिनवाणी है और गुरुवाणी तो उनके अंदर है ही। तुम सम्यक दर्शित चिंतन, सम्यक प्रकार से उनको वो दर्शाते हैं कि आगम क्या कह रहा है, उनको समझ में आ जाता है कि गुरुवाणी और जिनवाणी इनमें अंतर पड़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है ये भगवान जाने, लेकिन पढ़ रहा है ये सुनिश्चित है, ये मेरे सामने प्रमाणित हो चुका है कि दोनों में अंतर है। तो अब वो सम्यक दृष्टि जीव जगा न सकते थे, जब श्रद्धा नहीं करता किस पर, जिनवाणी पर और गुरुवाणी पर, जो श्रद्धा है उस पर अटल रहता है, तो सोचेव तदो बहुदी मिच्छा इट्य हुई, उसी क्षण से मिथ्या दृष्टि बन जाती है। ये इतनी मार्मिक गाथाएं हैं कि इसका चित्रण जय धवला ग्रंथ में, इसका चित्रण लब्धिसार ग्रंथ में, इसका चित्रण धवला ग्रंथ में, इसका चित्रण गुम्मटसार जीव कांड में, और इसका चित्रण अन्य भी अनेक स्थानों पर। तो सारांश ये है कि कभी गुरु के मुख से कोई बात आपने सीख ली और आप बड़े श्रद्धालु हैं, बड़ी प्रशंसनीय बात है, तो आग्रही मत बनना, आचार्य लिखते हैं चाहे वो कसाय पावड़ ग्रंथ की गाथा हो, चाहे लब्धिसार की, चाहे गोमटसार जीवकांड की, चाहे अन्य किसी भी ग्रंथ की, ये वाली गाथा की, इसमें आचार्य स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये जिन शासन निष्पक्ष सत्य को ही ग्राह्य बताता है और निष्पक्ष सत्य के प्रणेता सिर्फ सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव होते हैं। अगर गुरु के मुख से भी निष्पक्ष सत्य कारणवश नहीं निकल पाया हो, अथवा निकला हो पर शिष्य की समझ में कुछ और आ गया हो, तो वो पक्षपात, गुरु का पक्षपात भी उसको क्षण मात्र में मिथ्या दृष्टि बना सकता है, अगर वो आगम का पक्ष छोड़कर गुरु का पक्ष ग्रहण करे तो। क्या निष्पक्ष है जिन शासन, अद्भुत। और ये स्वयं गुरु लिख रहे हैं, गुणधर आचार्य जय धवलाल षटखंड कसाय पाहुड़ ग्रंथ के रचयिता है, नेमीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुम्मटसार जीवकांड और लब्धिसार के रचयिता है, वो स्वयं लिख रहे हैं कि जब जिनवाणी और गुरुवाणी में अंतर मिले तो जिनवाणी को पकड़ लेना अगर सम्यक दृष्टि रहना चाहो तो, और अगर सम्यक दर्शन का आपको सम्यक दर्शन से लगाव ना हो तो गुरुवाणी को पकड़ लेना, जिनवाणी को त्याग देना। पर यह भी याद रखना, समंतभद्र आचार्य महाराज ने रत्नकरण श्रावकाचार्य में कहा है कि इस संपूर्ण जगत में, तीनों लोक में और तीनों काल में मिथ्यात्व के समान कोई शत्रु नहीं है और सम्यक्त्व के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है। इसलिए चयन आपके ऊपर छोड़ा, मां ने बाध्य नहीं किया संतान को कि मैं कह रही हूं वैसा ही मान, तू विवेकी है जो दिखाए सो कर ले, अगर तेरे को मिथ्यात्व अच्छा लगता है तो स्वतंत्र है। पर मैं तुझे इतना बता सकती हूँ कि मिथ्यात्व के कारण तू अनादि काल से अनंत भाव धारण कर चुका है और अनंत काल तक अनंत भाव धारण करेगा, इसलिए तेरा कल्याण सम्यक दर्शन में ही होगा, इतना बता सकती हूँ। पर तुझे अगर सम्यक दर्शन ना पसंद है तो फिर तुझे कौन मना सकता है? माँ तो अपने बेटे को कह ही सकती है ना कि व्यसन मुक्त रहना, लेकिन बच्चे को अगर शराब पसंद है तो 24 घंटे माँ पहरेदार थोड़ी बनी रहेगी। तो इतनी बड़ी बात कह दी यहां पर। इसलिए इन गाथाओं से यह सूचित होता है कि गुरु से बड़ी जिन वाणी है। आजकल एक पूरा एक बड़ा समूह है जो गुरु को जिनवाणी से ऊंचा मानता है, आपको पता नहीं होगा, एक बड़ा विशाल समूह है जो गुरु को जिनवाणी से ऊंचा मानता है। वस्तुतः जो गुरु जिनवाणी से भी ऊंचे स्थान पर है वो मात्र गणधर देव है। आजकल के गुरु नहीं, आजकल के गुरु तो उस जिनवाणी के सामने बहुत छोटे, बहुत। अगर वो जिनवाणी का उल्लंघन करेंगे तो गुरु नहीं रह जाएंगे, याद रखना। तो कौन बड़ा हुआ? जिनवाणी बड़ी हुई ना। और मंगलाचरण में अपन क्या पढ़ते हैं? अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भीर उपासित तीर्था सरस्वती हर दुनो दुरितम। मुनियों के द्वारा उपासित तीर्थ रूपा जिनवाणी माता सरस्वती है। तो जो उपासित है वो बड़ा है या उपासक है वो बड़ा है? मुनि भी उपासित तीर्थ, मुनियों द्वारा उपासित है जिनवाणी। तो मुनि जिनकी उपासना कर रहे हैं वो मुनि से बड़ी हुई कि नहीं हुई? निश्चित हुई। और भी ऐसी बहुत सारी युक्तियां हैं इसमें और आगम भी है कि गणधरों की बात छोड़ो, क्योंकि उन्होंने तो रचना की है, द्वादशांग के रचयिता है वो। लेकिन जो बाकी हैं, जो उत्तरकालीन उनकी शिष्य परंपरा के जो आचार्य आदि हैं, वो जिनवाणी से बड़े हो ही कैसे सकते? अगर जिनवाणी के एक अक्षर पर वो श्रद्धान करना छोड़ दे तो तुरंत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। आप विचार करो, भगवती आराधना की 38वीं गाथा में लिखा है, पद मक्खरम च एकम नहु रोचे जो हुसुप्त निदिट्ठम अवशेषम रोचन तो मिच्छा इट्ठी मुणे यभु। एक पद अथवा एक अक्षर पर भी जिसको श्रद्धा नहीं है वो शेष समस्त आगम पर श्रद्धालु होकर भी मिथ्या दृष्टि होता है। बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए देव शास्त्र गुरु ये क्रम। पंडित चोडरमल जी ने देव गुरु शास्त्र लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशक में, और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षणा सम्यक्त्व वर्धिनी क्रिया सम्यक्त्व क्रिया, सम्यक्त्व क्रिया का वर्णन करते हुए पूज्यपाद आचार्य महाराज ने चैत्य गुरु प्रवचन ये क्रम लिखा है। चैत्य का अर्थ जिन प्रतिमा, गुरु का अर्थ आचार्य उपाध्याय साधु, और प्रवचन का अर्थ जिन वाणी। तो ये क्रम महानता का क्रम नहीं है। कभी कभी वक्तव्य में भी क्रम भिन्न होता है। अगर आप बड़े छोटे का क्रम देखोगे तो नमोकार मंत्र का क्रम बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नमोकार मंत्र में जो सबसे बड़े हैं वो सिद्ध भगवान है, लेकिन नमस्कार का क्रम जो रखा गया है उसमें पहले अरहंत को नमस्कार किया गया। और जैसा हमने पूर्व में कहा था कि प्रोफेसर राममूर्ति त्रिपाठी इंदौर उज्जैन वालों ने कहा था अपनी श्री गुरु महिमा नामक पुस्तक में, उन्होंने लिखा है कि जैनों के जो उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स बनाए हैं, सिखों के गुरु, बौद्धों के गुरु, फिर सनातनियों के भी अलग अलग प्रकार के गुरु और फिर जैन गुरु। उन्होंने बोला कि महामंत्र में जैनों में बड़े गुरु को दूसरे स्थान पर नमस्कार किया है और जो द्वितीय थे उनको प्रथम नमस्कार किया है। क्यों? क्योंकि द्वितीय के बिना प्रथम पद प्राप्त नहीं होता। अरहंत की वाणी के बिना आज तक कोई सिद्ध नहीं बना। इसलिए पहले कारण को फिर कार्य को नमस्कार किया है। सिद्धत्व का कारण अरहंत की वाणी है, इसलिए पहले अरहंत को नमस्कार, फिर सिद्ध को। फिर धवला में और दूसरे हेतु दिए हैं कि क्रम ऐसा क्यों है। तो कथन का क्रम आगे पीछे हो सकता है, पर बड़प्पन का क्रम अगर अपन देखेंगे तो फिर वहां पर देवशास्त्र गुरु ये क्रम बनेगा। और तीर्थंकर प्रकृति की जो 16 कारण भावना है वहां पर भी आप देखो अरहद आचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति, तो अरहंत, फिर आचार्य, फिर बहुश्रुत यानी उपाध्याय, और फिर प्रवचन यानी जिनवाणी। तो ऐसा क्रम क्यों रखा है वहां पर? क्योंकि अरहंत तो देव हो गए, फिर आचार्य उपाध्याय गुरु हो गए, और प्रवचन यानी शास्त्र जिनवाणी हो गई, तो देव गुरु शास्त्र ऐसा क्रम हो गया। ऐसा क्यों रखा है क्रम? तो बड़प्पन का क्रम नहीं है, वो क्रम चेतन और अचेतन की अपेक्षा से। अरहंत चेतन है, आचार्य और उपाध्याय भी चेतन है, तो पहले तीन चेतन को ले लिया, फिर प्रवचन यानी जो शब्द रूप जिनवाणी है वो अचेतन है, उसको उसके बाद में रख लिया। ऐसी अर्थापत्ति उचित नहीं है कि बाद में इसलिए रखा कि जिनवाणी आचार्य और उपाध्याय से भी छोटी होती है, ये अर्थापत्ति घटित नहीं हो सकती। और इसी तरह एक तर्क और भी आता है कि चत्तारी मंगलम, अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, सावन मंगलम, केवली पंडित उदम मंगलम, तो यहाँ पर भी अरहंत है नहीं, पहले अरहंत है, फिर सिद्ध है, फिर साधु है, और फिर केवली पंडित उदम, केवली द्वारा कथित जो धर्म है जिनवाणी। वस्तुतः तो केवली पंडित तो जो धम्मो शब्द है वो जिनवाणी का वाचक नहीं है। अगर कोई ऐसा कह दे आपको, अगर तर्क देने के लिए कोई ये कह दे कि देखो चौथे स्थान पर जिनवाणी है, तो उसका उत्तर ये है कि चौथे स्थान पर जिनवाणी नहीं है, केवली पंडित तो धम्मो कह रहे हैं वहां पर। वहां केवली के वचन को मंगल नहीं कह रहे हैं, केवली के वचन तो अरहंत मंगल में ही आ गए, क्योंकि अरहंत केवली है और उनके वचन अरहंत से अलग नहीं किए वहां पर, अरहंत मंगल में ही केवली वचन आ गए। और यहां पर केवली द्वारा प्रज्ञप्त जो धर्म है उसको मंगल कह रहे हैं, जिनवाणी को मंगल थोड़ी कह रहे हैं वहां पर चौथे स्थान पर। तो फिर क्या क्रम ऐसा लगाएं अपन कि अरहंत बड़े हैं, फिर उनसे छोटे सिद्ध हैं, उनसे छोटे तीनों साधु हैं, और उनसे छोटा धर्म है, ऐसा क्रम लगाओगे? ये उल्टी सीधी अर्थापत्ति कल्याणकारिणी नहीं हो सकती। बड़े छोटे का क्रम जब अपन अपने चिंतन में लाते हैं तब अपने को निष्पक्ष होना पड़ता है। अब किसी ने कुछ भी बताया हो उसकी वो जाने, लेकिन अगर अपन बड़े छोटे की बात करेंगे तो देव, शास्त्र और गुरु, यही क्रम होगा। और मंगल कितने होते हैं? तो ऐसे कोई गिनती दी नहीं है शास्त्रों में मंगल कितने होते हैं। अब आप अगर ये कहो कि चार मंगल होते हैं, तो चार मंगल होते हैं वो चार ऐसे मंगल होते हैं जो उत्तम और शरण भी है। जो मंगल उत्तम और शरण रूप भी है वो मंगल चार हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि चार ही मंगल है, ये भी गलत अर्थापत्ति हो जाएगी कि चार ही मंगल है। अगर चार ही मंगल है तो नमोकार मंत्र मंगल है कि अमंगल? और नमोकार मंत्र उन चारों में है क्या, या उन चारों से भिन्न है? नमोकार मंत्र तो पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करने वाला मंत्र है, वो पंच परमेष्ठी थोड़ी है। नहीं आ रहा समझ में? नमोकार मंत्र में क्या है? नमो अरिहंताण, अरिहंतों को नमन, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को। तो नमोकार मंत्र परमेष्ठी नहीं है, नमोकार मंत्र परमेष्ठियों को किया हुआ नमस्कार है। तो फिर वो परमेष्ठी से भिन्न हो गया, तो अरहंत सिद्ध साधु से अलग हो गया नमोकार मंत्र। अरहंत सिद्ध साधु में पांचों परमेष्ठी आ गया, क्योंकि साधु के तीन भेद हैं। और चौथा मंगल जो है वो धर्म ले लिया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में अपन बड़प्पन के क्रम से ये पाठ नहीं कर रहे हैं, ये पाठ जिस अपेक्षा से है उस अपेक्षा से कर रहे हैं। इसमें अपन बड़े छोटे का विभाग नहीं कर रहे हैं। अब बड़े छोटे का जब विभाग करोगे तो सिद्ध सबसे बड़े हैं, दूसरे स्थान पर अरहंत है, फिर आचार्य हैं, फिर उपाध्याय हैं, फिर साधु हैं। और धर्म तो इतना बड़ा है कि यदि धर्म ना हो तो ये कोई ना हो। धर्म के ही कारण इन सब का अस्तित्व है। सिद्ध भक्ति में भी अंचलिका लिखी, कुंद कुंद आचार्य महाराज ने वो लिखते हैं, इच्छा में उनते सिद्ध भक्ति का हो सको कहो दशा लोचो। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सम्मदनाण सम्मदंसड सम्मचरित जुत्ताणम, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इनसे युक्त हैं, उन सिद्धों को मैं अर्चन, पूजन, वंदन, नमन करता हूँ। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र क्या है? धर्म है। इसको उमा स्वामी आचार्य महाराज ने मोक्ष मार्ग कहा है, समंतभद्र आचार्य महाराज ने इसको धर्म कहा है। रत्नकरण श्रावकाचार्य में तीसरी कारिका में सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु। इसलिए अभी अपन बड़े छोटे के उसमें ना जा करके अपन कल्याण की ओर ध्यान दें। उपाध्याय परमेष्ठी इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश फैलाते हैं, और प्रकाश में उचित अनुचित, हेय उपाधेय, सत्य असत्य सब का परिचय प्राप्त हो जाता है। फिर लगता है कि नहीं, आग्रह कषाय है, आगम ज्ञान है। कल्याण ज्ञान से होता है, अकल्याण कषाय से होता है। इसलिए आग्रह रूप कषाय का त्याग कर आगम रूप ज्ञान का मार्ग अपन स्वीकार करें। उपाध्याय परमेष्ठी ये सिखाते हैं। जैनम जैत शास्त्र, शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई,
सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। समाधि शुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।